بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام ہے وقاص میر اور آپ سن رہے ہیں اردو پاڈ کاسٹ۔ آج کے ہمارے مہمان مولانا سلیم علوی صاحب، امام ہیں آئی سی سی ناروے کے، ہمارے پہلے بھی پروگرامز میں ہمارے ساتھ آ چکے ہیں اور آج دوبارہ ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہے۔ تو مولانا صاحب، بہت بہت ویلکم آپ کو۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کے چینل سے، آپ کے ریفرنس سے، آڈینس سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔
شکریہ جی۔ آج کا ٹاپک ہمارا، ہمارے پہلے ٹاپکس ہو چکے ہیں فیملی کے اوپر، بچوں کے بارے میں، شادیوں کے بارے میں، بیلنس کے اوپر بات کرتے ہیں تھوڑی سی، کہ دین اور دنیا کو لے کے ایک مسلمان کیسے آگے چل سکتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر بیلنس کسی بھی چیز میں نہیں ہوگا، امبیلنس ہو جائے گا تو معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ دین یا بہت ساری دنیا، یا پھر اسلام کیا ہمیں 50-50 بھی سکھاتا ہے، یا پھر اسلام 70 ہونا چاہیے، دنیا 30 ہونی چاہیے؟ اس کے اوپر آپ پلیز تھوڑی سی روشنی ڈالیے اور ہمیں بتائیے کہ ہم اپنی زندگی کو میانہ روی سے کیسے گزار سکتے ہیں۔
بہت شکریہ، ایک بہت اہم موضوع کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے یہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں بہت ضروری ہے کہ اس ٹاپک پہ بات ہونی بھی چاہیے اور بات کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی تذکیر، ہم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں تذکیر کا، ریممبرنس، یاد دہانی، اس کی یاد دہانی جتنی زیادہ کروائی جائے، کہ جو بیسک اسلام کا کنسیپٹ ہے اس کنسیپٹ کو دور سمجھا جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ ان بیلنس کنسیپٹ ہو چکا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری شاید نماز روزے کا نام ہے، آپ نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، روزے رکھیں، نفلی روزے رکھیں، صدقہ خیرات، چیریٹی کا کام کریں، بس آپ کا دین مکمل ہو گیا۔ حالانکہ دین اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ایک خوبصورت اور متوازن گلدستہ ہے، اور اسلام کے لیے ہم لفظ دین کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ لفظ دین، یہ ریلیجن اس کی عام طور پہ ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، ریلیجن چند ریچولس کا نام سمجھا جاتا ہے، لیکن دین جو ہے یہ ریچولس کا نام صرف نہیں ہے، یہ تو کنسیپٹ آف لائف ہے، اور جو آپ کی زندگی کے تمام ایریاز کو کور کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے، گائیڈ لائن دیتا ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بیلنس کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ صرف حقوق اللہ کی ادائیگی کرنا اور حقوق العباد کو چھوڑ دینا یہ بھی درست نہیں ہے، اور صرف حقوق العباد کو فوکس کر لینا، حقوق اللہ کی پرواہ نہ کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اس میں بیلنس کرنا یہ بڑا ضروری ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، پریکٹیکلی ہم اس سے سیکھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ یعنی بیلنس ہونا چاہیے، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اور کسی چیز کو بھی آپ ان بیلنس جب کرتے ہیں تو وہ درست نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم عربک گرامر کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ ظلم کی تعریف کیا ہے، تو عربک گرامر میں ظلم کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وضع الشیء غیر محلی، کہ کسی چیز کو، یعنی اس کی جو اس کا اہل نہیں ہے، یا وہ چیز کی جو اس کے ریکمینڈڈ طریقہ اس کا نہیں ہے، اس کے مطابق کرنا، یہ ظلم قرار دیا گیا۔ عدل کیا ہے؟ کہ وضع الشیء فی محلی۔ اب اس میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں پورا بتاتا ہے کہ جیسے اب ایک ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کا جو اہل ہے، جو اس کا کمپیٹنٹ ہے، تو وہ جب اس کو ذمہ داری کو پورا کرے گا، اس کے حوالے ذمہ داری کی جائے گی، تو یہ عدل ہے۔ اگر نا اہل کے سپورٹ کی جائے گی، جو اس چیز کا، یعنی وہ ٹیلنٹ نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، اس کی ایجوکیشن نہیں ہے، یا ایکسپیرینس نہیں ہے، اس کے حوالے آپ ایک معاملہ کر دیں گے، تو یہ چیز ان بیلنس کرنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ہم اس کنسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین اور دنیا میں توازن کیسے رکھنا ہے۔ دنیا اور آخرت، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ دنیا گریمیٹیکلی قریب کی چیز کو دنیا کہتے ہیں، اور آخر کا معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والی۔ تو یہ جو زندگی ہے، اس کے لیے ہم دنیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ چونکہ ہمارے قریب ہے، ہم اس کو ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اس میں رہ رہے ہیں، تو وہ چیزیں فرسٹ ہینڈ ایک لحاظ سے ہوتی ہیں، دوسری اس کے لیے دنیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور آخر بعد میں آنی ہے، بعد میں کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن آخرت میں کامیابی کا انحصار دنیا میں کیے جانے والے اعمال پہ ہے، یا ہم نے کس طرح دنیا کی زندگی گزاری ہے۔ تو اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ آپ بیلنس رکھ کے چلیں، और बैलेंस इन इबादत में भी हो, मामलात में भी हो, माशरत में भी हो, हुकूक अल्लाह में भी हो, हुकूक अल्इबाद में भी हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस, उसका मैं रेफरेंस दूंगा कि एक दफ़ा तीन सहाबी, वो उन्होंने आपस में डिसाइड किया, डिस्कस किया, सहाबा में नेकियों का बड़ा कंपटीशन था, वो कोशिश करते थे कि हम कौन सी नेकी ताकि हम ज़्यादा उसको कर लें, ज़्यादा अपने आप को। नहीं, उनके यहाँ ये कंपटीशन नहीं था जैसे आजकल हमारे यहाँ मटीरियलिस्टिक अप्रोच की वजह से कंपटीशन होता है कि जैसी गाड़ी, ऐसा घर, ऐसा वो सारी चीज़ें हम उसको देखते हैं, उधर कम्पीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके यहाँ जो कंपटीशन था वो नेकियों का था। अब सहाबा इकराम जाते हैं और जाके अज़वाज मुतहरात से पूछते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पब्लिक लाइफ है वो तो हमारे सामने है, पब्लिक में हमारे सामने होते हैं जो आप इबादत बाकी मामला, लेकिन असल तो बंदे का पता चलता है कि उसकी फैमिली के साथ कैसे उसके रिलेशन है, और घर के अंदर वो चीज़ें जो हमारे सामने नहीं होती तो उनको आप कैसे वो करते हैं, घर में इबादत का क्या रूटीन है। तो उन्होंने पूछा सारी चीज़ें पूछ के, तो उसके बाद उन्होंने ख्याल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हैं, उन्हें तो कोई एक्स्ट्रा इबादत की ज़रूरत भी नहीं है। तो हदीस के अल्फाज हैं कि उन्होंने ना हुज़ूर की इबादत को कम समझा, शायद हुज़ूर कम इबादत करते हैं। तो उसमें फिर एक बंदा कहने लगा कि वो आइंदा रात को कभी सोएगा नहीं, इशा से लेकर फजर तक वो हमेशा क़यामुल्लैल करेगा। दूसरा कहने लगा कि वो हमेशा रोज़ा रखेगा, यानी पूरा साल रमज़ान के अलावा वो नफली रोज़े रखेगा। और तीसरा कहने लगा कि वो तजर्रुद की ज़िंदगी इख्तियार करेगा, वो शादी नहीं करेगा, फैमिली लाइफ तो इसमें वो उसकी एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बिज़ी कर देती हैं, तो लिहाजा मैं जब अल्लाह की ताकि आवाज़ ठीक सुई से कर सकूँ।
बिल्कुल
अब अज़वाज मुतहरात ने जैसी बातें दरवाजे पे खड़े होकर ये बातें वो कर रहे थे, उन्होंने डिसाइड किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अज़वाज मुतहरात ने वो बातें सुन ली, हुजूर आए, उन्होंने बताया कि इस तरह आए थे कुछ बंदे और उन्होंने ये सवाल किया और फिर आपस में ये डिस्कस किया। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को जमा किया, जमा करके कहा कि भाई ये लोगों को क्या हो गया कि लोग ये कहते हैं कि वो हमेशा रोज़ा रखेंगे हमेशा। ये भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरबियत का अंदाज़ है कि कभी अपने नाम लेके किसी को वो नहीं नहीं कहा कि तुमने ये काम क्यों किया।
सुभान अल्लाह,
ये भी हिकमत के जनरली सबकी ताकि रहनुमाई हो जाए सब, अब जो होता था वो बंदा समझ जाता था कि मेरी वजह से ये हो रहा है, लेकिन सबके लिए एक जनरली टीचिंग आ जाती थी, रहनुमाई आ जाती थी। अब उसमें होता क्या है कि हुज़ूर ने सबको जमा किया, जमा करके उसके बाद फिर कहा कि भाई लोग ये कहते हैं कि वो नमाज हमेशा वो रात को इबादत करेंगे, या हमेशा वो दिन को रोज़ा रखेंगे, या वो शादी नहीं करेंगे। तो मैं कि भाई मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ, मैं तुम सबसे ज़्यादा मुत्तकी हूँ, परहेज़गार हूँ, और मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब हूँ, और मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह की इबादत भी करता हूँ, लेकिन मैं क्या है मैं रात को सोता भी हूँ, आराम भी करता हूँ, और नफल भी पढ़ता हूँ, तहज्जुद हुज़ूर का रूटीन थी, और दिन को नफली रोज़े भी रखते थे। लेकिन फरमाया कि मैं रोज़े भी रखता हूँ, फिर मेरी शादियाँ भी हैं, फैमिलीज़ भी हैं। तो ये यानी ये जो कंसेप्ट है उसने आप इस आपने इस कंसेप्ट की नफ़ी की कि दीन को आप सिर्फ लेके चलें और ये जिम्मेदारियां हैं, ये माशरे में रहना, सोसाइटी में रहना, सोसाइटी में एक्टिव होना, तो ये शायद कोई दुनियावी चीज़ है, ये भी इसको भी हुज़ूर ने दीन करार दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया कि जो बंदा बिज़नेस करता है और बिज़नेस में वो इस्लामी उसूलों को फॉलो करता है, तो फरमाया कि वो क़यामत वाले दिन अम्बिया के साथ उसको उठाया जाएगा, सिद्दीकीन और शहदा के साथ उठाया जाएगा। यानी अम्बिया, जाहिर सी बात है कि नबी का मकाम सबसे बुलंद मकाम है, फिर शहदा का मकाम है, तो उनके साथ उनको उठाया जाएगा। यानी इतनी बड़ी उनकी शान है कि जो इस्लामी उसूलों के मुताबिक तिजारत कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। अब इसमें देखें कि बिज़नेस में चूँकि डायरेक्टली हुकूक अलइबाद इन्वॉल्व होते हैं, तो हुकूक अलइबाद की वजह से अल्लाह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल से बात सिखाई है कि आपने इन चीज़ों को सीखना है। और इनको आज के दौर में हम ये देखते हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोग सिर्फ जो वो कहते हैं कि जी नमाज, रोज़ा, उम्रा करो, नफल नफली हज पे चले जाओ, ये करो वो करो, और बाकी जो मामला हैं उन पर उनका फोकस नहीं होता है।
लेकिन मौलाना साहब, आपने बड़े प्यारे तरीके से सारी बातें अभी किस्म का ये टॉपिक खोल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से, अभी और भी बातें करनी है हमने। तो आजकल के ज़माने में, इस दौर में जो बहुत ही बिजी दौर हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुकी है, एआई का ज़माना है, सब मुख्तलिफ चीज़ें जिन जिन मामलों में हम बड़े हुए हैं वो चेंज हो चुकी हैं। हमारे बच्चों के आगे कई ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, हमारे हमारे अपने काम के अंदर काफी चेंजेस आ चुके हैं, तो इसको लेके गुजारा करना, घर का गुजारा करना, फॉर एग्जांपल अपने काम पे, उसके अलावा नमाजें पढ़ना टाइम पे, तहज्जुद पढ़ना टाइम पे, बाद में मुख्तलिफ सेटअप्स के थ्रू देखा जाए तो मस्जिद के कुछ नमाजों के टाइम्स अलग अलग होते हैं, वहां पर कई लोग कहते हैं फज्र पहले फज्र बाद में, आप समझ में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस पूरे मामले में ये तो अल्लाह ताला एंड पे बताएगा ना किसने कितना किया, कितनी कोशिश की, तो हमसे किस चीज़ की डिमांड है कि हम किस हद तक जा सकते हैं बैलेंस रखने के लिए, क्या कोई परफेक्टली कर सकता है इस चीज़ को?
देखिए, जो इस्लाम हमें ना बेसिक कंसेप्ट देता है, कंसेप्ट दे देता है, उसूल दे देता है, और उन उसूल को आपने अपने जो ज़मीनी हकायक हैं उनके मुताबिक इंप्लीमेंट करना होता
ठीक
है। ठीक है, जो आपको मकामी, अब जैसे हर एक का, जिस की तरफ आपने नमाजों के औकात के हवाले से इशारा किया है, तो हर कंट्री का अपना जो है वो उनकी अपनी लोकेशन अलग है, उसी तरह से उनकी टाइमिंग अलग है, बहुत सारी चीज़ें।
जी जी
ठीक है, तो इसमें हम यानी इस्लाम ने हमें एक उसूल सिंपल दे दिया है, रोज़े के हवाले से भी सिंपल उसूल है, नमाज के हवाले से भी। अब आपने उन उसूलों को प्रैक्टिस करना है। बेसिकली तो आप ये देखें कि उनकी हिकमत क्या है, ये फ़िलासफ़ी क्या है, उस उन इबादत की फ़िलासफ़ी क्या है, या उन अहकाम की फ़िलासफ़ी क्या है, और उन फ़िलासफ़ी को चाहे बेशक AI से भी एडवांस अगर कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, जब आप फ़लसफ़ा इस्लाम को समझेंगे, इस्लामी तालीमात और इबादत और उनके जो बेसिक फ़िलासफ़ी होगी उनको समझेंगे, तो फिर आपके लिए उसको प्रैक्टिस करना और उस पर अमल करना आसान हो जाएगा।
ठीक
ये बिल्कुल हकीकत है कि आज ज़माने के चैलेंजेस मुख्तलिफ होते हैं, हमारे बचपन के चैलेंजेस यानी 80s में 70s
तो
में वो
डिफरेंट
डिफरेंट थे, अब बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि उस दौर में भी कुरान तो वही है जी, दीन के उसूल भी वही हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस व सीरत भी वही है, और ये क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए है, और उसमें जितनी भी अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आती जाएंगी, उसमें जितनी भी अपग्रेडेशन और चेंजिंग आती चली जाएगी, तो इस्लाम ने तो हमें सिंपल उसूल दे दिए कि जिन उसूलों को आपने लेके चलना है। अब देखें, इबादत की तरफ आप बात करते हैं, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से हमें ये बात कही है कि खैरुल आमाल इलल्लाह तआला अदवमुहा व इन कल्ल, कि अल्लाह ताला को आमाल में सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो अमल है कि जो आप कंटिन्यूसली करते हैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ, बनमर्जी
बिल्कुल
बेसिस पे, भी थोड़ा सा ही करें, बेशक 2 रकत आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है, 2 रकतें आप पढ़ें, लेकिन एवरी डे पढ़ें, पूरा साल पढ़ें, ठीक है, आप बेशक एक पेज कुरान का डेली पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन पढ़ें तो सही, ये नहीं है कि एक दिन आप जो 5 पारे पढ़ लें, 10 पारे पढ़ लें, और उसके बाद फिर महीना कुरान पढ़ लें नहीं, तो ये जो अनबैलेंस्ड जो
ओह
रवैया
यस,
है।
बीन देयर डन दैट, हम कर चुके हैं काफी कुछ इस
बिल्कुल
चीज़ें। तो दुनिया में, आपने दीन की बात की, दुनिया दुनियावी बैलेंस को सामने रखते हुए, शादीशुदा मर्द है जिसके बच्चे भी हैं, जिसकी फैमिली भी है, जिसके ससुराल भी है, जिसका जिसके वालदैन भी हैं, तो वहाँ पर वो किस तरह से बैलेंस करेगा? मैं सुनने वालों में से काफ़ी लोग गैर शादीशुदा भी होंगे, लेकिन किसी न किसी तरह से किसी न किसी से रिश्ते में भी वो हैं, तो उनको क्या राय देंगे आपके अपने दीन को बचा के रखते हुए अपनी दुनिया को कैसे वो संवारें?
देखें, इस्लाम बिल्कुल ना दुनिया से कट ऑफ होने का, आइसोलेट होने का ना कहता है और ना मोटिवेट करता है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा क्लियरली इस हवाले से कहा है कि इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं है। रहबानियत क्या थी? ईसाइयों के यहाँ ये कंसेप्ट था कि दुनिया को छोड़ के अलग अलग गारों में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ और उधर रहो, तुम्हारा दुनिया की नियमतों को अपने ऊपर आराम समझते थे। देखिए, इस्लाम ने इन चीज़ों से कोई मना नहीं किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया कि एक बंदा ये चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, उसका पहनावा अच्छा हो, रहस्य अच्छी हो, सारी चीज़ें, तो क्या ये तकबर में आता है? तो मैं कहती ये चीज़ तकबर में नहीं आती। अल्लाह ने जो आपको नेमतें दी हैं उन उनका हक अदा करने का ये भी है, शुक्र अदा करने का एक तरीका ये भी है कि आप उन नेमतों को इस्तेमाल करें, ये प्रैक्टिकली उनका शुक्र है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को, तो इसमें अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी रहायश, इसमें कोई जो है वो खिलाफ इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम के अकॉर्डिंग है, इस्लाम के मुताबिक है, और अल्लाह ने आपको वसाइल दी, आप रहें, उसमें कोई ऐसी ममानियत नहीं है। और जहाँ तक बात है कि भी अपने बैलेंस कैसे रखना है, ठीक है, आपकी शादी से पहले की लाइफ, शादी के बाद की लाइफ, उसमें जाहिर सी बात है कि फ़र्क आता है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब पहले आप अपनी सिर्फ रिस्पॉन्सिबल थे, अब आपके साथ आपका लाइफ पार्टनर भी है, आपने उन दोनों को लेके चलना है, फिर इसमें ये था कि पहले आपके सिर्फ जो है वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे, अब आपके इनलॉज भी आ गए हैं। और मैं तो अक्सर ये बात आपके चैनल के थ्रू भी कह चुका हूँ कि जो इनलॉज हैं वो इनलॉज भी, उनका भी सेम स्टेटस है अकॉर्डिंग टू कुरान, अकॉर्डिंग टू कुरान की सेम रिस्पेक्ट है, सेम स्टेटस है, और आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी है कि ये मेरी बीवी के माँ बाप या मेरे शोहर के माँ बाप नहीं, ये मेरे भी माँ बाप हैं, ये हमारे वालिदैन हैं। तो जिस तरह अपने वालिदैन अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, तो उसी तरह आपने इनलॉज की भी रिस्पेक्ट करनी है। और ये चीज़ें ही ऐसी हैं कि जो मियाँ बीवी के आपस में मोहब्बतें बढ़ाने का जरिया बनती हैं। और इसमें अगली चीज़ ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये जब आप निकाह करते हैं तो निकाह भी तो आप अल्लाह के हुक्म से करते हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया है, अनकिहू का हुक्म है कुरान में कहा है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको निसफ ईमान करार दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि निकाह दुनियावी मामला नहीं है, ये भी दीनी मामला है कि जिस तरह आप नमाज नफली पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, ठीक है, तो इसी तरह जब आप निकाह के नतीजे में जो आप पर जिम्मेदारियां आयद हुई हैं जब उनको आप पूरा करेंगे तो आपको उसी तरह सवाब मिलेगा। इस दफ़ा बाकायदा साहबा इकराम ने हुज़ूर से पूछा, हुज़ूर ने फरमाया कि बंदा अपने वाइफ के साथ टाइम गुजारता है, शरीक है आपके साथ, तो उसमें भी उसे अजर मिलता है। तो साहबी कहने लगा कि रसूल, एक बंदा अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है और उस पर भी आप उसे सवाब की बशारत दे रहे हैं। फरमाया कि वही ख्वाहिश अगर नाजायज़ तरीके से पूरी की जाती तो उस पर सजा थी, गुनाह था, तो वही जब जायज़ तरीके से पूरी की जा रही है तो उस पर सवाब है। तो इसमें ये चीज़ें बेसिक कंसेप्ट्स का मसला है कि आप उस कंसेप्ट को समझें और उस कंसेप्ट को। और इसमें आप देखें कि हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़िया बड़ा मशहूर वाक़िया है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू दरदा, ये दोनों हुज़ूर ने इनको मुँह बोला भाई बनाया था हिजरत के बाद, मुआख़ात कायम की थी और उस मुआख़ात में एक अंसारी और एक मुहाजिर, उनको आपस में हुज़ूर ने भाई बनाया था। इसमें हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत सलमान फ़ारसी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपस में भाई बने। अब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन, अब उनका जो भाइयों का ताल्लुक़ था उस हकीकी भाइयों से, खूनी रिश्तों से बढ़ के था, एक दूसरे के घर आना जाना, फैमिली और वो बहुत सारी चीज़ें। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में हज़रत सलमान फ़ारसी उनको विज़िट करने के लिए गए, मुलाकात के लिए गए, तो वो घर में नहीं थे। और उन्होंने देखा कि उनके घर वाले बड़ी जो है वो परागंदा हालत के अंदर, अजीबोगरीब हालत बनाई गई है और बस घर के कामों में लगी हुई है। फरमाया कि ये कैसी हालत बनाई हुई है, अपने आप को कोई संवार के रखे हैं और सारे मामला। तो उन्होंने कहा कि आपके जो भाई हैं अबू दरदा, उन्हें तो कोई हाजत ही नहीं है, तो बीवी किसके लिए संवरे, तो आप शोहर के लिए सजती हैं संवरती है। तो फिर खाने का टाइम हुआ, लंच का टाइम हुआ, तो वो आए, उन्होंने खाना बनवाया, ख़ुद खाना खाने से इनकार किया, कहा कि मेरा तो रोज़ा है तो आप खा लें। तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, फ़र्ज़ रोज़े तो हैं नहीं, नफली रोज़ा तो मैं रखा हुआ है, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊँगा। उन्हें ज़बरदस्ती रोज़ा तोड़वाया, साथ खाना खिलाया, फिर पूरा दिन गुजारा, फिर शाम हुई तो इशा पढ़ के वो फिर नफल पढ़ना शुरू हुए, और मैंने आराम करें सुला दिया, फिर फजर के करीब उठाया और फिर और कहा कि बैलेंस आप लेके चलें, आपके घर वालों का भी आप पे हक है। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु की बात बड़ी अजीब लगी और जाके हुज़ूर से शिकायत की कि हज़रत सलमान फ़ारसी ने मुझसे रोज़ा तोड़वाया भी है, रात को नफल भी नहीं पढ़ने दिए, और ये तो कोई तरीका नहीं है, मेरे तो सारे इबादत और सारा रूटीन उन्होंने ख़राब करवा दी। तो हुज़ूर ने फरमाया कि सलमान ने दुरुस्त कहा है, सलमान ने दुरुस्त कहा है कि तुम्हारे घर वालों का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी आंखों का भी तुम्हारे ऊपर हक है, और हर हकदार को उसका हक दो। यानी अब जिस्म की जो बेसिक नीड्स हैं उसको विटामिन्स देना, उसको मिनरल्स देना, वो सारी चीज़ें, तो ये भी जिस्म का हक है, ताकि हमारा जिस्म अगर वो सेहतमंद होगा तो हम उसे एक्टिवली अल्लाह की इबादत भी कर सकेंगे, रिज़्क़ हलाल भी कमा सकेंगे, बाकी सारी। तो ये चीज़ खिलाफ़े दीन नहीं है, खिलाफ़े इस्लाम नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम है। और अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना तो उसको भी कहा, फिर रात को आराम करने के बारे में कहा कि ये भी तुम्हारे जिस्म का हक है, उसको उसका हक दो, जिस्म को हक दो, फैमिली को टाइम देना, ये भी तो उसका बाकायदा हुज़ूर ने हक। अब हमारे यहाँ मसला एक ये बन चुका है ना कि हमने हर चीज़ अनबैलेंस कर दी है, हर चीज़ के दीन के हवाले से भी अनबैलेंस कर दी है और दुनिया के हवाले से भी। अब ये लोग यानी सोशल इतने सोशल हो जाते हैं कि उनके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि उनके साथ आप इकट्ठा खाना खा लें, उनके बच्चों छोटे बच्चे हैं तो उनके होमवर्क में, उनकी स्कूलिंग में उनसे कोई बात करें, मशवरा करें, उसके बाद बड़े हो गए हैं तो उनकी यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स और सारी चीज़ें, फिर उनकी बाकी आप उसने एक रिलेशन बिल्ड करें, तो रिलेशन बिल्ड करने पे फोकस नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे आप देखें कि फां के इतने मिलियंस फॉलोअर्स हैं और इतने के फॉलोअर्स हो चुके हैं, और ये और घर में जो उसकी अपने हैं
उनको पता ही नहीं है कि ये
उनको
बंदा
पता ही
कौन है।
नहीं।
अब कुछ दिन पहले ही एक वीडियो पोस्ट देख रहा था, वहाँ पर किसी ने शेयर की हुई थी एक छोटे से बच्चे की, अपने वालिद के बारे में बात कर रहा था वो। उसकी वालदा कहती है, वो वालदा रोने लग पड़ी बताते हुए, कहती कि मेरे बच्चे ने देखा एक अपने वालिद को लोगों के दरमियान में बात करते हुए, तो कहते कि काश मेरे ये मेरे मेरे अब्बू इस तरह ही होते घर में भी। तो कितनी ज़्यादा इस वक्त सिचुएशन है, और सुनने वालों में भी ऐसा होगा, इस तरह के दौरों में से काफ़ी लोग उनको भी पढ़ते हैं कि कभी कभी बंदा इस तरह की सिचुएशन में चला जाता है जहाँ पर बच्चे ये सोचते हैं कि काश मेरा बाप ऐसा ही होता जैसे दूसरों के साथ है, जैसा कि लोग उसको देखते हैं, काश वैसा ही होता। तो यहाँ पर बैलेंस कहाँ पर आएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो कि इस टॉपिक में से मैं निकालना चाहता हूँ थोड़ा सा। इसके ऊपर अलग भी एक करेंगे कि बेटों के साथ कैसे बात की जाए, बेटियों के साथ कैसे बात की जाए। दो मुख्तलिफ जेंडर्स हैं, तो दोनों के साथ तरीका भी ज़ाहिर है थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इनको संभालने का और इनको पालने का। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर सकते हैं कि जो वालदेन काम करते हैं, जो वालिद काम करते हैं, उनका दूर रहना अपने बच्चों से ज़्यादा देर तक, और वहाँ पर बैलेंस कैसे लाया जाए। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो कहते हैं जी ये भी तो इबादत है भाई, मैं काम कर रहा हूँ। तो ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मशहूर ये आगे से जॉब मिलता है, वैसे हमेशा आप काम पे होते हैं, इबादत है यार।
नहीं, रिस्क के हलाल कमाना बिल्कुल इबादत है,
हाँ
लेकिन
लेकिन
रिस्क के हलाल कमाना बिल्कुल इबादत है, लेकिन उसके साथ से देखें, अल्लाह ने औलाद दी है तो औलाद की तरबियत ये भी उसी तरह की इबादत है।
जी
अल्लाह ने कुरान में बड़ा क्लियर लिखा है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार, क्या ईमान वालों खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। और हुजूर की हदीस भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयत, कि तुम में से हर एक जिम्मेदार है, हर एक सुपरवाइज़र है, हर एक गार्डियन है, और उसे उसकी कैपेसिटी के मुताबिक उससे पूछा जाएगा। तो अब वालिद वो घर का ज़िम्मेदार है, शोहर होने की हैसियत से भी उसकी ज़िम्मेदारी है, वालिद होने की हैसियत से भी उसकी ज़िम्मेदारी है, और अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में पूछा जाएगा। हमारी हमारे यहाँ आमतौर पर ये समझा जाता है कि हमारी सिर्फ ज़िम्मेदारी क्या है, कि हम घर से बाहर के जो काम है वो करके लाएँ, कमा के लाएँ, ये हमारा काम है, घर के अंदर हमारा क्या वो काम नहीं है, घर के अंदर खातून खाना का काम है।
बिल्कुल
लेकिन जब हम हिस्ट्री देखते हैं, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखते हैं, तो सीरत हमें ये बात बताती है कि घर के अंदर भी उसी तरह आपने एक्टिव रहना है, सिर्फ बाहर के काम नहीं, घर के अंदर बच्चों की तरबियत, और बच्चों की तरबियत में फिर अहले खाना की तरबियत में, और इन सारी चीज़ों में आपका एक्टिव होना ये बड़ा ज़रूरी है, और ये बिल्कुल ऐन दीन है, दीन के मुताबिक है, दीन के ख़िलाफ़ नहीं।
ये कल्चर ने हमें एक किस्म का इस तरफ धक्का दे दिया है कि बंदा बाहर के काम करेगा, घर आते ही वो बस कुर्सी पे बैठे खाना खाना उसने, और सफाई हुई है सब, बच्चों का होमवर्क भी हो चुका है। तो ये कल्चर हमें इस चीज़ के ऊपर मजबूर करता है कि ये मेल का रोल है, इस्लाम नहीं कहता इस चीज़ को।
इसमें देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि हम जब वो दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं ना, कल्चर को भी और मज़हब को भी,
तो कहाँ पे कल्चर को साइड पे करना है फिर हमने, कहाँ पर कौन बताएगा?
कल्चर कल्चर जब तक अकॉर्डिंग टू इस्लाम है तो
ठीक है,
कल्चर ठीक है।
तो अगर निकाह सही तरह इस्लामिकली हुआ है तो वो निकाह है,
जी
लेकिन अगर थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हुआ काम तो वो फिर कल्चरली निकाह हो चुका है, इस्लामिकली नहीं रहा,
नहीं,
वहां फिर कितनी लचक देंगे आप इस
उसमें
चीज़ को?
निकाह वाली थोड़ी बिल्कुल बात ही बिल्कुल डिफरेंट है ना। लेकिन कल्चर का मसला ये है ना कि हमारे यहाँ जो रस्म रिवाज के नाम पे हैं, जिनको हम दीन समझ,
जी
और उसमें खुशी भी है उसमें गमी भी, ठीक है, वो रस्म रिवाज चाहे खुशी के हैं या शादी ब्याह के मौका पर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम वो समझते हैं। जैसे हमारे यहाँ ऐसे कंसेप्ट बना हुआ है कि बच्ची को जी कुरान के साय में रुख्सत करना है,
हाँ जी बिल्कुल
ऐसे। अब वो कुरान का साया कैसे बनाया जाता है कि जी अब रुख्सती होने लगी है तो जाएं जी कुरान लेके आए और कुरान के साय में उसको रुख्सत करें। देखिए कुरान की यानी उसको बुक कॉपी लाई जाती है और उसको गिलाफ पे लपेटा हुआ और नीचे से वो दुल्हन को गुजारा जाता
जी
है।
जी बहुत आगे
हालांकि ये हमारे कल्चर में ये चीज़ है। बेसिकली इस्लाम का तो क्या है, कुरान के साय में क्या आप बच्ची की तरबियत कुरान के मुताबिक करें, उसको सिखाएं, उसको दीन बताएं, पढ़ाएं, शोर दें, और उसकी रोशनी में जब अभी ज़िंदगी गुजारेगी, उस कुरान की रोशनी में, कुरान की हिदायत की रोशनी में जब वो ज़िंदगी गुजारेगी
जी जी
तो फिर उसकी ज़िंदगी में सुकून होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि वो एक रस्मन एक चीज़ बनाई हुई है कि उसकी साय में, कुरान के साय में हमने बेटी को रुख्सत किया है, और ठीक। तो बाकी वो सारी चीज़ें वो हमने कल्चर को लिए हुआ रस्म रवाज में, तो उस वजह से फिर हमें वो बरकात हासिल नहीं होती, वो सवाए फवायद हासिल नहीं होते, कि वो सुकून घरों में नहीं आता है, कि जो जब जब उस तसव्वुर को दुरुस्त अंदाज में समझा जाता है, इस्लामी तशख्स को उजागर किया जाता है, तो
जी
सब
जी
चीज़ें ठीक बन।
मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, बैलेंस के हवाले से, दीन और दुनिया, उसमें भी दीन और दुनिया इन्वॉल्व होता है। कहाँ कहाँ पर एक मर्द होने के नाते और जो खवातीन सुन रही हैं वो किस तरह से इस बैलेंस को टैकल कर सकती हैं, उनको ये ना लगे कि हुक्म आ रहा है।
असल में बेसिक वही है ना, एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरे आपके राइट्स हैं।
जी
आज के दौर में हम देखते हैं कि लोग राइट्स को फोकस करते हैं, यानी हर एक अपने ये जी वाइफ के राइट्स हैं, ये हस्बैंड के राइट्स हैं, अपने राइट्स की हर एक बात करता है लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात नहीं करता। हालांकि जो एक के राइट हैं वो दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब शोहर के जो राइट हैं वो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
बिल्कुल
और जो वाइफ के राइट हैं वो शोहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बैलेंस तो ये होता है ना, शोहर अब उसने अब जाहिर सी बात है वो किसी का बेटा भी है, वो किसी का भाई भी है, और कल वो किसी का बाप भी बनेगा, ठीक है। तो अब उसने ये चार रोल हैं जिनको उसने प्ले करना है, जिसमें एक्टिव होना है। ये भी इस्लाम नहीं कहता है कि जी अब आप शोहर बन के अब सिर्फ शोहर ही अब बन जाए, ठीक है, अब बेटे वाला रोल छोड़ दें, भाई वाला रोल छोड़ दें, और सिर्फ शोहर के बाद फिर बाप वाला रोल ही प्ले करें। आपने ये चारों रोल प्ले करने हैं और चारों एरियाज के अंदर अपने आप को एक्टिव रखना है। बीवी की भी यही है कि वो किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है, और उसने कल माँ भी बनना है, तो ये वो भी इन चारों एरियाज के अंदर रहे। अब जब तक ये चार एरियाज में वो बैलेंस नहीं आएगा कि वो अब सिर्फ शोहर बन के बैठ गया है, ठीक, और उसने जी अपने वालिदैन को छोड़ दिया, ये रवैया भी दुरुस्त नहीं। वो जब वो अपने बहन भाइयों और उनके अपने फ्रेंड्स के सर्कल में वो ज़्यादा एक्टिव हो गया, पीछे बीवी बेचारी घर में बैठी हुई है, ये भी रवैया दुरुस्त नहीं है, ठीक है। इसी तरह अब जब तक इन चीज़ों में बैलेंस नहीं होगा, ये भी ठीक है, अब आपको सोशल सर्कल भी है उसको भी, लेकिन बीवी मियाँ बीवी ये दूसरे के वो दोस्त भी हैं, वो अपनी हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, अब ज़िंदगी उनके दरमियान कंबाइन हो चुकी है, ठीक, और उस कंबाइन ज़िंदगी में अब वो मेरी और तुम्हारी वाला कंसेप्ट तो ख़त्म हो चुका है, वो हमारी ज़िंदगी है, हमारी हुकूक हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे वालिदैन हैं, हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं। तो जब ये कंसेप्ट आएगा तो फिर उसमें बेहतरी आने का इम्कान होता है, उसमें फिर बैलेंस भी शायद ठीक है। अब इस्लाम हरगिज़ ये नहीं कहता है, ये इस्लामी तालीमात हरगिज़ ये नहीं कहती हैं कि आप शादी के बाद अपने दोस्तों से कट ऑफ हो जाएं, ताल्लुक़ रखें आप अपना, लेकिन बैलेंस के साथ हो। अब ये भी नहीं है कि आप हर वक्त उधर दोस्तों के साथ ही हैं, जो आउटिंग हो रही है, सारी फैमिली को भी टाइम दें, दोस्तों को भी टाइम दें, जॉब को भी टाइम दें। अब हमारे यहाँ कि एक ये भी एक अनबैलेंस्ड रवैया है कि लोग ऑफिस के काम वो सारी चीज़ें घर साथ ले आते हैं, अब घर में जो फैमिली टाइम आपने देना है, अपना अपना क्वालिटी टाइम भी आप अपनी फैमिली को देने के बजाय अपनी जॉब को दे रहे हैं घर के अंदर बैठे हुए। तो अब काम है तो काम और घर में है तो घर, उसमें ये चीज़ों को फिर एक चीज़ ये भी आ चुकी है आज के दौर में कि घरों में जब आप हैं अपनी फैमिली के साथ हैं तो उस वक्त आप हर वक्त ज़्यादा तो हर हद से ज़्यादा सोशल मीडिया में आप बिजी हैं, ठीक है। तो ये भी जो रवैया है ये भी अनबैलेंस्ड रवैया है, ठीक, कि आपके साथ जो फिजिकली बैठा वो बंदा है उसके साथ आपका कॉन्टैक्ट हुई नहीं,
बिल्कुल
ठीक, या उसके साथ आपका एक वाजिबी सा ताल्लुक है, और एक दुनिया के दूसरे कोने में बैठा हुआ, तो और उसमें मैं तो अक्सर ये बात करता हूँ कि गो के हम ये अभी यही चैनल इस्तेमाल भी कर रहे हैं दावत के लिए, लेकिन जो असल तरबियत है, जो रूहानी तरबियत और अखलाकी तरबियत, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन वो चीज़ें नहीं हैं, वो फिज़िकली ये एक रूहानी ताल्लुक़ होता है, ये वेव्स होती हैं, ठीक है। तो इमोशनल
बिल्कुल
होगी जी नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, तो पॉजिटिव एनर्जी को थोड़ा सा एक्टिव करना, बढ़ाना, अपनी नेगेटिव एनर्जी को थोड़ा सा जो है वो कम करना, तो पॉजिटिव सोच को मजबूत करना, तो ये चीज़ें आपकी आपकी फैमिली के ऊपर, आपके गिर रहने वाले लोगों को मुतासर करती हैं और उसके फिर आगे असरा होते हैं। तो इस हवाले से ये बड़ा ज़रूरी है कि अब देखें जो लाइक्स के चक्कर में पोस्टें बनाई जाती हैं, रील्स बनाई जाती हैं, और पता नहीं क्या क्या बना बना के, तो अब उसमें जब वो अखलाकियात का जनाजा भी निकल जाता है और मामलात तो खराब होते ही होते हैं।
बेशक हमारे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है कि लोग जो हैं, जैसे आपने अभी लाइक्स की बात की, कि ऐसा ऐसा मवाद आ रहा है, ऐसा ऐसा कंटेंट आ रहा है जिसको आप सोच भी नहीं सकते देखने का, और आपके सामने से नजर के सामने से गुजरता है, आप सोचते हैं कि ये क्या सोच के कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने जाहिर सी बात है वो इम्बैलेंस तरीके से बता दिए कि यहाँ पर पैसे बनेंगे तो बनना शुरू हो गए।
लेकिन देखिए उसमें जाहिर सी बात है ना कि अब आपने सिर्फ लाइक्स से या मोनेटाइजेशन से कमाई तो नहीं कर रहे हैं,
नहीं करना
ठीक है। अब आपने अब ऐसा कंटेंट अगर बना के दे रहे हैं, अब ये पूरा अलहदा से टॉपिक है,
नहीं,
फिर किसी दिन हम बात
बिल्कुल
करते हैं।
करेंगे इसके ऊपर।
तो आप जब कंटेंट बना रहे हैं तो आपका कंटेंट कैसा है, ठीक है, आया वो किसी की इसलाह का जरिया बन रहा है या वो लोगों को गुनाहों पर मोटिवेट करने का जरिया बन रहा है,
जी जी
ठीक है। देखिए जैसे हमने इस पे पहले बात भी की थी कि जैसे सदका जारिया होता है, इसी तरह गुनाह जारिया भी,
बेशक
और गुनाह जारिया के लिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बड़ा जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिससे गुनाह जारिया अब शेयर से शेयर होती चली जाती है, या इसी तरह देखा देखी लोग मोटिवेट होते हैं, वो देखते हैं कि नहीं जी जब ये बंदा ऐसे कर सकता है, ये बंदा ऐसे कर रहा है, ठीक है, तो इसको मतलब कि अक्सर ऐसे करते हैं,
बिल्कुल सही,
ठीक है। अब आप पहले देखें कि इस्लाम में ना अल्लाह ने कुरान करीम में गुनाह की तशहीर से मना किया है, गुनाह और जुल्म की तशहीर से बाकायदा मना किया है, सिवाय उसके कि जिस पर जुल्म हुआ है तो वो जो है वो बता सकता है कि मेरे ऊपर ये जुल्म हुआ। लेकिन इस तरह ला युहिब्बुल्लाहु अल-जहर बिसू, छठे पारे की पहली आयत आप वो पढ़ लें, तो उसमें बड़ी क्लियरली अल्लाह ने कहा है कि गुनाह की तशहीर करना, गुनाह का इस तरह, तो उससे उसके उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात यही है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो गुनाह की ख्वाहिश रखते हैं, ठीक है, या गुनाह की उनमें शौक होता है, ठीक, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा होता। जब वो देखते हैं कि हाँ नहीं इसने भी किया, तो उन्हें जुर्रत मिल जाती है, हौसला मिल जाता है। इसी वजह से आप देखें ना कि इस्लाम में जो हुदूद की इम्प्लीमेंटेशन है, तो उसमें कहा गया है कि वो लोगों के सामने वली दादा पाफतमी को जब सजा दी जाए तो कैसे दी जाए, लोगों के सामने पब्लिकली, पब्लिकली पनिशमेंट का फ़ायदा क्या होगा कि बहुत सारे लोग की जो ख्वाहिश रखते हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा, तो उनकी ख्वाहिश फिर वो मर जाती है या दब जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो ये हमें इस्लाम ये चीज़ सिखाता है,
लॉजिक करना
ताकि
है इस बात
हाँ,
को।
तो ये कंटेंट जब वो बना रहे हैं तो कंटेंट ऐसा हरगिज़ ना बनाया जाए कि जिससे ये गुनाह की शौक पैदा हो या गुनाह की तरफ रगबत मिले, या जो है वो दूसरों को इम्फिसाइज करने का एक जरिया बन सके। ये गुनाह जारिया बन गया है आपका।
जबरदस्त। छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल आज के टॉपिक का, क्या किसी भी फैमिली में बहुत ज्यादा इस्लाम जो है का लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है, कि बहुत ज्यादा इस्लाम जो है हर एक मौके पे है, सुबह दोपहर शाम हर वक्त एक ही बात, हर वक्त एक ही टॉपिक के ऊपर बात। मैं एक क्लिप देख रहा था, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैं सवाल कर क्यों रहा हूँ। क्लिप आता है एक बहुत ही प्यारे से एक प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पर एक सवाल आता है और वहाँ पर कुछ दीनी हजरात बैठे होते हैं, और सवाल ये था कि बच्चा कहता है कि मुझे अपने दीन से नफरत हो चुकी है, इस्लाम से, और मसला क्या बताया उसने, रीज़न क्या बताया, कहता है कि हम कहीं पर भी जाते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, गाड़ी में अब्बू जी कुरान लगाते हैं, ठीक है, वापसी पे भी कुरान, जाते भी कुरान, घर आते हैं फिर कुरान, फिर हमें हिफ्ज़ करना होता है, फिर वहाँ पर मार भी पड़ती है, फिर उसके बाद फिर तरीका भी थोड़ा सा गलत ना, फिर उसके ऊपर ये होता है कि आपने हमें जन्नत में लेके जाना है, हिफ्ज़ करेंगे तो वालिद साहब खुद इतने ज़्यादा दीनी नहीं है। ये बात जब उन्होंने की ना, तो फिर सारे जो उलमा बैठे थे उनको समझ आ गई कि अब जवाब क्या देना है इस चीज़ के ऊपर। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है सुनने वालों में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने वो क्लिप नहीं देखा होगा, तो मैं आपकी तरफ से भी एक राय चाहता हूँ कि ये यहाँ पर बैलेंस भी ख़राब हो गया, और साथ साथ वालिद साहब की तरफ से अपना काम भी, जो जो बच्चे ने देखा है वो नहीं देखा, तो
असमें देखिए वो कहते हैं ना कि बच्चे वो करते नहीं हैं जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं कि जो आप वो करते हुए देखते हैं,
बेशक
ठीक है। जब आप नमाज घर में पढ़ते हैं या आप नमाज को अहमियत देते हैं, अजान सुन के आप मस्जिद जाते हैं, बच्चे वो बच्चे की गैर शोरी तौर पे उसकी तरबियत हो रही होती है, उसको नमाज की अहमियत का पता चल रहा होता है। अब घर में आप कितनी देर खुद ज़ाती तौर पर कुरान पढ़ते हैं, ये चीज़ आगे बच्चा वो उससे शुरू से अगर आपकी एक रूटीन है तो बच्चा वो चीज़ सीख रहा होता है।
डर से बात है।
तो उसने हमारे यहाँ ये भी होता है ना कि हम खुद अपने आप को ना बदलें लेकिन बच्चों के ज़रिए जो हम वो करें, ठीक है। और बच्चा भी फिर क्या होता है जब वो देखता है कि ये शायद इस्लाम जो है वो हलाल इंजॉयमेंट से भी मना करता है, हलाल तफरी से भी मना
यही
करता
वो
है।
कह रहे थे।
तो इस्लाम तो हलाल तफरी से मना नहीं करता है, इस्लाम तो तफरी मज़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा मज़ाक की है, और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो तकवा के ख़िलाफ़ है, हंसी मज़ाक करना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से मज़ाक भी करते थे, बड़ों से करते थे, गपशप लगाते थे, कभी महसूस नहीं होता था कि जो आपने एक जिसको कहते हैं ना थोड़ा सा फासला रख के, तो सबके साथ घुल मिल के रहना। तो इस्लाम तो हमें चीज़ ये सिखाता है, और ये यही सुन्नत भी है कि हम दीन की मोहब्बत पैदा करें, और ना ये कि दीन की इस तरह, जाहिर सी बात है कि जब तक बच्चा वो इंडिपेंडेंट नहीं है, जब तक वो डिपेंडेंट है तो वो तो मजबूर है, ठीक, तो वो मजबूरी की हालत में वो करता है, जो ही वो इंडिपेंडेंट होता है तो वो उतना ही 180 डिग्री पे वो चेंज हो जाता
बिल्कुल
है।
बिल्कुल
तो ये जो रवैया है, ये रवैया दुरुस्त नहीं, तो ये भी एक क्लास है। तो इसमें जो भी वालदैन ये चाहते हैं कि उनके बच्चे नमाजी बने, तो पहले खुद नमाजी बने, वो जो चाहते हैं कि उनके बच्चे कुरान पढ़े, पहले खुद पढ़े, पहले खुद घर में एक रूटीन बनाएं, घर में कुरान से एक सर्कल भी, आज मिल के हम बैठ के जैसे हम खाने का इंतजाम करते हैं, तो आज हम मिल के बैठ खाने से पहले 10 मिनट ये सारे एक एक सूरत पढ़ लें, सारे एक एक आयत पढ़ लें, या जो है उसको हम ये कह सकते हैं कि एक एक आयत का तर्जमा पढ़ लें। अगर बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं जिन्होंने कुरान की तिलावत करना सीख लिया है, तो एक एक आयत तर्जमे के साथ पढ़ लें। चले जी, एक बेटे को कहें, बेटी को कहें, थोड़ी सी तुम इसकी तफसीर कर दो, सूरह आसर की तफसीर कर दो, सूरह कौसर की तफसीर कर दो, सूरह इखलास की कर दो। तो ये क्या है कि ये चीज़ें थोड़ा सा बच्चे में एक तो पढ़ने का मुताले करने का शौक़ पैदा करेंगी, दूसरा ये होगा कि वो दीन के करीब आएंगी, शोरी तौर पे करीब आएंगी। वो हमारे यहाँ ये कि हम जो इनहेरिटेड, तो इस्लाम हमें इनहेरिटेंस में मिला है, विरासत में मिला है, हम शोरी तौर पर उस तरह मुसलमान नहीं होते। ये एक अनफॉर्चुनेटली कि हम इस्लाम को ना सीखते हैं, और हम ये समझते हैं कि हमने अपने बच्चे को नाजरा कुरान पढ़ा दिया है, उसने पढ़ लिया है, हमारी
काफी
जिम्मेदारी पूरी हो गई,
काफी
ठीक
मैं
है।
एक चीज नोट कर रहा था मौलाना सर कि अब हमारी जो जनरेशन है, हम जो 70s 80s 90s के बाद इस दुनिया में आए हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं या फिर वो हैं जो कि 30 35 के लगभग हैं, तो आपको लगता नहीं कि आपने भी देखे होंगे इस तरह के दीनी घरों से निकले हुए बंदे जो कि अब दीन से बहुत नफर हो चुके हैं, या फिर थोड़ा सा उस लेवल के नहीं है जिस लेवल का उनके वालदैन ने उनके ऊपर प्रेशर डाला होगा, या फिर उनको कोशिश की होगी कि हमारा बच्चा भी इस तरफ आए, जो कि बड़ी अच्छी सोच है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने जो भी बात की ना कि बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बल्कि वो करते हैं जो कि वो आपको देखते हुए हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं वैसे ये कि अभी जो हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं उनको देख के जो सुनने वाले हैं वो अपना थोड़ा सा स्टाइल चेंज करें, क्योंकि ये अगर इनहेरिटेंस ही हुई है, जाहिर सी बात है दीन तो हमने इनहेरिट किया ही है, लेकिन साथ साथ हमने वो अपने वालदैन की या फिर अपने मामू हजरात की या अपने चचाओं की भी, बच्चों को पालने वाली भी सोच इनहेरिट कर ली है, जबकि हमें पता है कि वो हमारे कजन्स वगैरह उस लेवल पे अब नहीं है जिस जहां पर होना चाहिए था उनको।
जी बिल्कुल ऐसी है जी। इसमें देखिए ना, मैं तो सबसे पहले रिकमेंड यही करूँगा कि जब एक बंदा मिच्योर एज में पहुँच जाता है ना, उसके बाद उसे यानी शोरी तौर पर खुद ये चीज़ें सीखनी चाहिए, यानी नमाज क्यों पढ़ते हैं, फ़िलासफ़ी ऑफ प्रेयर क्या है, उसकी फ़िलासफ़ी क्या है, ठीक है, फास्टिंग की फ़िलासफ़ी क्या है, वो सीखें समझें, और उसके बाद जब आप खुद शोरी तौर पर ना, फिर आप उस पर कॉन्फिडेंटली उस पर अमल कर सकेंगे, अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे अंदाज में आप गुजार सकेंगे,
जी जी
और आप खुद इबादत करते हुए यानी उसको सिर्फ एक प्रैक्टिस के तौर पे नहीं लेंगे, बल्कि वो आपकी लाइफ चेंजिंग जो है वो एक मेथड बनेगा, और आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आएगी। पहली चीज़ तो ये है।
बिल्कुल
दूसरी चीज़ ये है कि अब जब हम भी बच्चों को सिखाएं समझाएं, उसमें डायलॉग का एक जो माहौल होना चाहिए, घर में एक डायलॉग का माहौल बना के आप वो चीज़ें करें, ना ये कि एक अथॉरिटेटिव स्टाइल में आप डिक्टेट करें, ये चीज़ ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो, नहीं, क्या हम ये ऐसे ना कर लें, या थोड़ा सा अंदाज आप अपना बदल लें, दोस्ती वाला अंदाज जो है वो बनाए। अब हम ये भी बात कहते हैं और सुनते हैं कि जी हमने अपने बचपन में तो बड़ी सख्ती बर्दाश्त की, ऐसे किया ऐसे किया, वो और दौर था, वो उस तरह वो चीज़ें वो नहीं थी। अब दुनिया बन चुकी है ग्लोबल विलेज, और ग्लोबल विलेज में क्या है कि छोटी सी छोटी आप जरा सी बात करें तो बच्चे आज के छोटे बच्चे भी होते हैं 5-6 साल का, वो भी कहते हैं गूगल करके दो, मैं कर लेता है, और एआई ने तो मजीद चीजों को फास्ट ट्रैक
बिल्कुल
कर दिया है। तो अब उसमें अब आपको भी जैसे बात है कि वो रिवायती तरीके हमें वालिदैन को भी छोड़ने पड़ेंगे कि पेरेंटिंग अब उस तरह नहीं है, ये पेरेंटिंग बाकायदा अब एक साइंस बन चुकी है और उसको बाकायदा सीखना पड़ेगा। और ये पेरेंटिंग से पहले जो है वो मियाँ बीवी को जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और उसके बाद फिर अपने रवैये थोड़े से बदलने पड़ेंगे। तो ये यू क्या कहते हैं सोशल साइंसेज है।
सोशल साइंस, मुझे आपकी बात से एक एक बात याद आ रही है। अपने छोटे बेटे को मैंने कहा कि किसी मामले में मैंने उससे को बात की, और जाहिर सी बात है मैं खुद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ एआई और काफ़ी टेक्निकल हूँ, लेकिन मेरे जहन गुमान भी नहीं था कि वो उसके पास उस लेवल का जहन होगा कि वो भी जाके चेक करेगा। मैंने उससे कुछ बात की कि ये नहीं ऐसे नहीं होता, अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, कोई चेहरे के हवाले से कोई बात थी। तो उसने चैट जीपीटी से पूछ के 5-10 मिनट बाद मुझे दोबारा डिस्कशन हो रही थी तो वहीं पर बता दिया कि नहीं बाबा इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होता, इस तरह इस तरह होता है इस तरह। तो मुझे आपकी इस बात पे बहुत बात याद है कि ये अब वो सचमुच में वो वक्त नहीं रहा कि अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो ये खराब हो जाएगा, ये करेंगे, 2 सेकेंड लगाते हैं बच्चे,
अब देखिए हम बच्चे अब लॉजिक लगा
एक्सेप्ट
सकते
करना
हैं,
पड़ेगा, वैसे
बिल्कुल
चेंज हो चुका है वक्त,
तो अपने आप को भी ना अपग्रेड करना पड़ेगा। है अब
करना पड़ेगा कि ये बच्चे वो वाले बच्चे नहीं है जैसे हम थे। सुभान अल्लाह।
अब तो वैसी बात है बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, हमारे यहाँ हमारे बचपन
बहुत
तो थोड़ा सा दूसरा अंदाज भी हो जाता था, लेकिन आज के दौर में ये इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अब जाहिर सी बात है कि लेकिन हमें ये उसूल ना बिल्कुल बेसिक्स में मिलते हैं, ठीक है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है, मैं अक्सर वो कोट भी करता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि अक्रिमु औलादकुम व अहसिनु अदबा, कि अपनी औलाद की रिस्पेक्ट करो, ठीक, बाकायदा हुक्म दिया अपनी
सुभान
औलाद की रिस्पेक्ट करो और उनको अदब सिखाओ, अच्छा अदब सिखाओ, अखलाक। तो ये चीज़ें तो हमें वहां से मिलती हैं, लेकिन अब हम आज के दौर में कहते हैं ये मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं, ये मॉडर्न साइकोलॉजी है और ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है और फलां फलां,
ये इन्होंने बनाई है जी पेरेंटिंग टेक्निक्स।
तो ये चीज़ें हमें जो बेसिक्स हैं वो तो वहां से मिलती हैं।
सुभान अल्लाह।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का बड़ा मशहूर फरमान है कि भी अपनी औलाद को अपना दोस्त बनाओ कबल इसके कि वो कोई और उनको दोस्त बन जाए।
क्या लॉजिक है।
जी दोस्त बन गए, नहीं वो दोस्त बनाने का मतलब क्या, दोस्तों में थोड़ी सी बेतकल्लुफ़ी होती है, दोस्तों में जो है वो फर्क नहीं होता है, दोस्तों से बात बंदा खुल के करता है, तो ये यानी दोस्ती वाला ताल्लुक हो वालिदैन और औलाद के
और यहाँ
दरमियान।
पर भी बैलेंस खराब हो जाता है मेरी, काफी मुख्य लोगों से बात होती है, और मैं उनसे जब पेरेंटिंग के ऊपर बात करता ना, वालिद की मोहब्बत या वालिद की मार के ऊपर, तो वहां पर ये दीनों दुनिया की बात करते करते देखा जाए कि वहां पर भी मुझे हमेशा मेजोरिटी में से यही महसूस हुआ है कि बहुत ही रवायती तरीके से उनकी परवरिश हुई है, जहां पर वालिद मजहबी थे भी और साथ साथ घर में भी टोटली नॉन मजहबी माहौल रहा है, तो वो उस मामले में भी है। तो अगर आप इख्तिताम अगर कोई इसके ऊपर थोड़ी सी बताना चाहें बात, साथ साथ हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करें तो इसको
इसमें ये जो इस्लामिक पेरेंटिंग है ये तो पूरा एक
बहुत
बहुत
बड़ा
बड़ा
टॉपिक है,
टॉपिक है, तो इस पे
अगले के लिए
तो
इंट्रो दे देते हैं आज।
उसमें हम इंशाल्लाह तफसीली बात भी करेंगे।
जी
इसमें से
जरूर
मुख्तसर सी मैं अभी जो बात इस ज़मन में मैंने दो एक हदीस का रेफरेंस दिया है, दूसरा हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोट मैंने मेंशन किया है,
जी
तो इन दो चीज़ों को अगर आप लेके चले ना, ठीक है, तो हमें बेसिक एक कंसेप्ट तो मिल जाता है। लेकिन मज़ीद मैं अभी उस डिटेल में नहीं
जी
जाऊँगा,
जाना,
आप
ये
भी
दो
इसमें
काफी हैं
जाने दो।
माशाल्लाह।
तो आप जब हम देखते हैं कि जब हम वो दोस्ती वाला ताल्लुक की हम बात करते हैं, दोस्ती में एक तो डिफरेंस नहीं है, फ़र्क नहीं है कोई उसमें, फिर वो एक बैलेंस, फिर उस पर दोस्तों में क्या होता है, अब कई मैंने खुद देखा है और सुनते भी हैं, लोग आके अपनी बातें बताते हैं। अच्छा बच्चा जब टीनेजर हो गया, ठीक है, या 18+ हो गया, तो अब क्या है वो वालिदैन डायरेक्टली अब उसको कह भी नहीं सकते, अब वो क्या करते हैं उसको कोई क्लोज फ्रेंड उसको देखते हैं। ये आपने भी शायद ऐसे केसेस सुने होंगे
जरूर
कि
ही है।
अभी उसके करीबी दोस्त को कहेंगे यार तुम इसको समझाओ, भाई ऐसे कर ले तुम भी। अब वो अपना दोस्त जो किसी और का की औलाद है उसकी बात वो सुनने पे तैयार है, जिनका वो खून है, जिन्होंने इसको पाल पोस के बड़ा किया, उनकी बात सुनने पे क्यों नहीं तैयार है?
दोस्त नहीं रखा।
वही ना, आपने असल मसला यह है कि वो एक रिलेशन बिल्ड ही नहीं किया, रिलेशन बिल्ड ही नहीं किया। अब इसमें देखते हैं कि हम एक और चीज़ है कि माएँ फिर भी थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करती हैं। हमारे पाकिस्तानी कल्चर में अगर हम बात करें ना, तो माँ फिर भी वो एक रिलेशन बिल्ड कर लेती है, दोस्ती होती है, मजाक करती है बच्चों के साथ, बच्चे माँ के साथ मजाक कर लेते हैं। लेकिन हमने वो वालिद का जो रोल है ना, तो उसको एक ऐसा बनाया हुआ है कि बच्चा बात करते हुए भी थोड़ा सा झिझकता है, खुल के बात नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है, जब वो बात ही नहीं कर सकता है तो वो रिलेशन कहाँ से बनेगा? रिलेशन नहीं बनेगा तो वो अपनी फीलिंग या अपनी जो उसकी सोच है वो आपके साथ शेयर नहीं करेगा, या उसे फिर ये अगर ये शेयर करना चाहे भी कि जब उस आगे से पता होगा कि मेरे वाले साहब फ्लेक्सिबल हैं ही नहीं, ठीक है, उन्होंने ठोसनी अपनी है, बात अपनी मनवानी है, तो वो बात फिर वो ठीक है, जो बात करने का फायदा ही कोई नहीं।
वैसे कितने दुख की बात है वैसे मौलाना साहब, के एक वालिद जो के उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, जो के रहमत बन के दुनिया में आते हैं, और वही उम्मती जो है जब घर का दरवाज़ा खोलता है या गाड़ी गैराज में आती है तो बच्चे ऐसे डर जाते हैं यानी कि पता नहीं कौन आ गया। टीवी बंद, मुंह बंद, आंखें बंद, कान बंद, सब कुछ, सब बच्चे इधर उधर। तो ये तो उल्टा होना चाहिए।
असल में वही कंसेप्ट का इशू है ना, पहले जिसकी तरह मैंने कहा है ना कि पहले खुद अपने आप को चेंज करें,
सबसे पहले वो था
जी पहले खुद चेंज करें, पहले खुद दीन सीखें, और उसके बाद फिर, लेकिन दीन भी वो कल्चर बेस्ड ना सीखें ना, दीन की जो प्राइमरी सोर्सेज हैं
जी,
उससे आप ये सीखें, ठीक, तो उसके बाद फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं।
सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया
बहुत
सर।
बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आप लोग सुन रहे थे उर्दू पॉडकास्ट, और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।